हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम का वक्त था। अर्णव ऑफिस से निकलने की तैयारी में था जब उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और तेज़ कदमों से चलते हुए कबीर अंदर आया। अर्णव ने नज़रें उठाकर उसे देखा। उतने में कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए हैरानगी से बोला, ये क्या सुन रहा हूँ मैं अर्णव, तू धृति को लेकर मिस्टर बंसल की पार्टी में जा रहा है?
बिल्कुल सही सुना है तूने, मैं जा रहा हूँ उसके साथ मिस्टर बंसल की पार्टी में।
अर्णव ने बिना किसी भाव के सहमति जाहिर की। उसका सवाल सुनकर कबीर ने एक बार फिर चौंकते हुए सवाल किया, पर क्यों जा रहा है तू? तू तो कभी किसी बिजनेस पार्टी में नहीं जाता, फिर आज क्यों जा रहा है और धृति को अपने साथ लेकर क्यों जा रहा है?
कुछ पुराने हिसाब बराबर करने हैं उसके साथ, इसलिए जा रहा हूँ, अर्णव ने कुछ खोए स्वर में जवाब दिया और सख्त निगाहों से सामने के केबिन में बैठी धृति को घूरने लगा।
उसकी निगाहों का पीछा करते हुए कबीर ने भी पलटकर धृति को देखा, जो अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। धृति को ऐसे देखकर और अर्णव के इरादों को समझते हुए कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने धृति को देखते हुए कहा, अर्णव, आर यू श्योर ये वही लड़की है? मतलब मैं जब जब इसे देखता हूँ, इसका मासूमियत से भरा चेहरा मुझे संशय में डाल देता है। कहीं हमने किसी बेगुनाह को तो सज़ा नहीं दे दी? मतलब उसको देखकर लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकती है?
अर्णव के कानों में कबीर के कहे शब्द पड़े। इसके साथ ही उसने धृति पर से निगाहें फेरते हुए कबीर को देखा और कड़वाहट भरे लहजे में बोला, इसकी मासूमियत पर मत जा, अक्सर मासूम लड़कियां ही अपनी मासूमियत के जाल में अमीर लड़कों को फंसाकर उनका फ़ायदा उठाती हैं और जब काम हो जाए तो छोड़ देती हैं उन्हें और किसी नए बकरे की तलाश में निकल जाती हैं।
ये बात भी ठीक है, फिर भी यार एक बार कन्फर्म तो कर ले, क्या पता सच में हमें धोखा हुआ हो।
कबीर ने जैसे ही ये कहा, अर्णव ने तुरंत ही उसकी बात पर ऐतराज़ जताते हुए कठोर स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, कोई धोखा नहीं हुआ है मुझे। मैंने खुद फ़ोटो देखी है जिसमें यही लड़की थी आकाश के साथ, और डायरी में नाम भी यही था, धृति अवस्थी। फिर इसे पहचानने में गलती कैसे हो सकती है?
अर्णव की इस दलील के आगे एक बार फिर कबीर हार गया। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, इस बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि शायद तू सही है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अर्णव धृति को साथ लेकर जा रहा है, पर उसके साथ वहाँ कुछ गलत मत करियो। भूल मत यार, वो एक लड़की है और तेरी पत्नी है, तू भरी महफिल में उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता।
कबीर की बातें सुनकर एक बार फिर कुछ कड़वी दिल दुखाने वाली यादें अर्णव के मन पर गहरा घाव छोड़ गईं और दर्द आँखों में उभर आया। साथ ही चेहरे पर अजीब सा गुस्सा झलकने लगा, जिस गुस्से में बेबसी और दर्द लिपटा था। अर्णव ने अपने कंधे पर मौजूद कबीर के हाथ को हटाते हुए तीखे शब्दों में आगे कहा, इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही नहीं, लड़कों की भी होती है।
सही कहा तूने, मैं नहीं भूल सकता कि वो एक लड़की है और एक लड़की होकर कितनी घटिया और गिरी हुई हरकतें की हैं उसने। अगर वो पत्नी है मेरी, तो वो भी भाई था मेरा, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, पर इसी लड़की के कारण मैंने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। नहीं भूल सकता मैं ये, कभी नहीं भूल सकता कि इस लड़की के कारण मैंने और मेरे परिवार ने क्या खोया है और क्या क्या सहा है।
अर्णव के चेहरे पर नफ़रत, कड़वाहट, दर्द, बेबसी जैसे कई भाव उभर आए। उसकी आँखों में बदले की आग के साथ दर्द नमी बनकर उतर आई। अर्णव की बात सुनकर कबीर एक पल को तो स्तब्ध सा उसे देखता रहा, चाहकर भी कुछ कह न सका, पर फिर उसने अर्णव के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से उसे समझाने की कोशिश की।
अर्णव, मेरी बात सुन, नफ़रत में इतना भी अंधा मत हो। माना धृति ने गलत किया, तो बदले में तू भी तो उसके साथ गलत कर रहा है, पर उससे बदला लेने के लिए इतना भी नीचे मत गिर कि तुझे खुद से ही घिन होने लगे। तू भी जानता है कि ये तू नहीं है, और जो तू धृति के साथ कर रहा है उसमें हर पल तो खुद को मारता जा रहा है। तूने अपना भाई खोया है, अब खुद को मत खो। बदला लेना है तो और भी बहुत से तरीके हैं। तुझे धृति को उसका दिया दर्द लौटाना है तो इससे तो मैंने भी कभी तुझे नहीं रोका। मैंने हमेशा तेरे हर सही गलत फैसले में तेरा साथ दिया है, पर आज जो तू करने जा रहा है उसमें मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। तुझसे दोस्ती में मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज मांगता हूँ। आज बख्श दे धृति को, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, आज धृति के साथ कुछ गलत मत करियो। तो उस लड़की के लिए मुझे हमारी दोस्ती का वास्ता दे रहा है?
कबीर की बातें सुनकर अर्णव ने चौंकते हुए सवाल किया और अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखने लगा। कबीर ने गंभीरता से हामी भरी, हाँ, क्योंकि मैं तुझे और गलत करते नहीं देख सकता। नहीं चाहता कि तेरे जरिए तेरी ही पत्नी की इज्जत का भरी महफिल में तमाशा बने। जो सबूत तेरे पास हैं उन्हें मैं झुठला नहीं सकता, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि धृति तेरी नफ़रत और ये सब डिज़र्व नहीं करती है। माधुरी और धृति की बहुत गहरी दोस्ती है और उसे पूरा विश्वास है कि धृति कुछ गलत नहीं कर सकती, और मुझे उसके विश्वास पर विश्वास है। मैं तुझे धृति के साथ अब ऐसा कुछ नहीं करने दे सकता जिसके बाद मैं माधुरी से कभी नजरें न मिला सकूं और तू अपने ही वजूद से नफ़रत करने लगे। मैं तेरे खिलाफ़ नहीं जा रहा, बस कह रहा हूँ कि तू तो उसके साथ रहता है, बस एक बार इस नफ़रत की पट्टी को खोलकर देखने की कोशिश कर। जो पहले हुआ उसकी गहराई में झांक कर देख, शायद हमसे धृति को पहचानने में कोई गलती हो गई हो। जानता हूँ नामुमकिन है, पर क्या पता ये धृति वो धृति न हो जिसने आकाश के साथ वो सब किया। और अगर इसी ने सब किया है तब भी मैं तुझे उसके जितना नीचे नहीं गिरने दे सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि आज की पार्टी में उसके साथ कुछ गलत मत करियो। भूलियो मत कि शादी की है तूने उससे और उसके मान सम्मान की रक्षा करना तेरा दायित्व है। उसकी इज्जत अगर सार्वजनिक रूप से उछली तो बेइज्जती उस धरती की नहीं होगी जिसने आकाश के साथ वो सब किया, बल्कि उसकी होगी जो तेरी पत्नी है और तुझ पर विश्वास करके तेरे साथ जा रही है। इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोस्ती के लिए ही सही, पर आज तू धृति के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कबीर ने अपनी बात पूरी की और एक नज़र धृति को देखते हुए जैसे ही अर्णव के केबिल से बाहर निकला, परेशान सी माधुरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बेचैनी भरी निगाहों में झलकते सवालों को समझते हुए कबीर ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोला, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है उसे समझाने की, हमारी दोस्ती की कसम भी दी है। उम्मीद है कि अब वो धृति को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कबीर जैसे ही चुप हुआ, माधुरी जलती निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, भरोसा कर रही हूँ तुम पर, लेकिन याद रखना, अगर आज तुम्हारे दोस्त ने मेरी दोस्त के साथ कुछ गलत किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे और तुमसे भी अपने सभी रिश्ते खत्म कर दूंगी। माधुरी ने जलती निगाहों से उसे घूरते हुए उसे धमकाया, फिर गुस्से से गुर्राते हुए पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। कबीर बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने बेबसी से अपनी आंखों को भींचते हुए खुद से कहा,
क्या करूं मैं, एक तरफ माधुरी है जिसे धृति पर इतना विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ अर्णव है जिसके पास धृति के गुनाहों के ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुठलाना भी संभव नहीं। कभी कभी धृति को देखकर भी लगता है कि जैसे ये वो धृति नहीं जिसका जिक्र आकाश ने किया था, पर वही शक्ल सूरत, वही नाम, धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं। पर फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर है क्या ये धृति? क्या सच में जैसे अर्नक सोचता है वैसी ही है ये? अपनी मासूमियत से सबको छलना ही इसका शौक है? क्या सब दिखावा है या सच में ये इतनी इनोसेंट है? कबीर अपने ही सवालों में बुरी तरह उलझ गया, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका तो उसने मन ही मन सब ठीक होने की विश मांगी और वहाँ से चला गया। अंदर केबिल में मौजूद अर्णव कुछ पल तो शॉक्ड सा खड़ा बस कबीर की बातों के बारे में सोचता रहा। फिर उसने नजरें धृति के केबिन की तरफ घुमाई तो अब वो अपना सामान समेटकर निकलने की तैयारी में थी। क्या हो तुम, वो जो आकाश ने बताया या वो जो बाकी सबको नजर आती हो? ये मासूमियत छलावा है या हकीकत? सच में तुम इनोसेंट हो या सब दिखावा है? सबको तुम सही लगती हो, पर जो मैंने देखा, सुना और पढ़ा वो क्या था? तुम ही थी वो, यही सूरत, यही नाम, फिर मुझे धोखा कैसे हो सकता है? नहीं, धोखे होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये मुमकिन ही नहीं। तुम ही हो मेरे और मेरे पूरे परिवार की गुनाहगार, और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देकर मैं अपने भाई के साथ न्याय करूँगा। जब वही दर्द, पीड़ा, तकलीफ और जिल्लत तुम सहोगी जो मेरे भाई को तुमने सहने पर मजबूर किया था, तब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। अर्णव का दिल धृति को इनोसेंट मान रहा था, पर दिमाग उसके गुनाहों को गिनवा रहा था। आज एक बार फिर दिमाग की दलीलों ने आगे अंतरात्मा और दिल से निकली आवाज दबकर रह गई। रात के 8 बज रहे थे। ड्राइंग रूम में लगे किंग साइज सोफे पर अर्णव अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। व्हाइट फॉर्मल शर्ट पर ब्लैक वेस्ट के साथ ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। सूट के नीचे के बटन को खोला हुआ था, गले में ग्रे कलर की टाई पहनी हुई थी। उसका गठीला बदन उस फिटेड 3-पीस सूट में और भी आकर्षक लग रहा था। बालों को जेल लगाकर बढ़िया से सेट किया हुआ था।
ट्रिम ही हुई दाढ़ी और चेहरे पर झलकता रौब उसको किलर लुक दे रहे थे। बाएं हाथ की कलाई में लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी, जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब सज रही थी। पैरों में मैचिंग बूट्स पहने वो आज की पार्टी में शरीक होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हैंडसम तो पहले ही बहुत था, पर आज तो अपने इस कातिलाना रूप से जाने कितनी ही लड़कियों के दिल पर बिजली गिराने वाला था वो। उसकी पर्सनालिटी से लेकर उसके एक्सप्रेशन तक सब कातिलाना था। उसका ऑरा ही कुछ अलग सा था। हाथ में अपना फ़ोन लिए वो कुछ कर रहा था। उसकी गहरी काली निगाहें फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, पर बीच बीच में वही निगाहें कभी उसकी कलाई में बंधी घड़ी पर जातीं तो कभी सीढ़ियों की ओर घूम जातीं। सर्वेंट सब एक तरफ को खड़े एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। कुछ ही देर में अर्नव का इंतज़ार खत्म हुआ जब उसकी निगाहें सीढ़ियों से उतरती धृति पर पड़ीं। उसके साथ ही माधुरी भी थी, पर अर्नव का ध्यान उस पर गया ही नहीं। उसकी निगाहें तो धृति पर ठहर सी गई थीं और वो उसके इस दिलकश दिलफरेब रूप को निहारने में इस कदर खो गया था कि अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर खूबसूरत सा इवनिंग गाउन पहना हुआ था उसने, जो नीचे से टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रखा था, जिससे चलने पर धृति की लंबी गोरी आकर्षक टांगें नज़र आ रही थीं। ड्रेस में उसका क्लीवेज नज़र आ रहा था। उस फिटिंग के गाउन में उसका मॉडल जैसा फिगर, शरीर के उभार बड़ी ही खूबसूरती से उभर कर सामने आ रहे थे। नेवी ब्लू रंग उसके गोरे बदन पर खूब खिल रहा था। बालों का मैसी बन बनाया हुआ था। कुछ कर्ली लटें उसके चेरी जैसे गुलाबी गालों पर अटखेलियां दिखा रही थीं। मांग में लगा सिंदूर कुछ इस तरह लगाया था जिससे वो बालों के बीच छुप गया था। चेहरे पर लाइट न्यूट्रल मेकअप किया था, जो देखने में पता तो नहीं चल रहा था, पर उसके चांद से चेहरे की खूबसूरती को निखारने में कामयाब रहा था। आज भी मेकअप के नीचे उसके अपर लिप का तिल छुप गया था। काजल आईलाइनर से सजी उसकी गहरी भूरी आंखें बहुत प्यारी लग रही थीं। गुलाब की पंखुड़ी जैसे कोमल लबों को सुर्ख रंग में रंगा हुआ था। कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने थे उसने, जिसका सेट गले की शोभा बढ़ाता नजर आ रहा था। बाएं हाथ में पर्ल्स का ब्रेसलेट पहना हुआ था। पैरों में पेंसिल हील्स पहनी थीं। आज धृति का अलग ही रूप अर्नव के सामने था। इंडियन लुक में बिना किसी साज श्रृंगार के भी वो अर्नव की निगाहों को खुद पर ठहरने की वजह दे देती थी। आज इस वेस्टर्न लुक में तो वो कहर बरपा रही थी। इतनी हसीन और दिलकश लग रही थी कि अर्नव के लिए ये लम्हा उसके चेहरे पर ही ठहर गया था। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अर्नव की कल्पना से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर उस खूबसूरती में एक कमी थी। यकीनन अपने इस रूप से आज उसने अर्नव के होश उड़ाए हुए थे, पर उस चांद से चेहरे पर घबराहट के भाव साफ पसारे बैठे थे। इन रिवीलिंग कपड़ों में धृति काफी असहज महसूस कर रही थी और वो असहजता उसके चेहरे और व्यवहार में साफ झलक रही थी। धृति बार बार गाउन को कभी ऊपर करती तो कभी झुककर अपने पैरों को ढकने की कोशिश करती। हील्स पहनने की शायद आदत नहीं थी उसे, इसलिए बार बार उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और माधुरी बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसे नीचे ला रही थी। धृति आज बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। उसका घबराया हुआ चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। धृति के चेहरे के भावों और उसके व्यवहार को देखते हुए अर्नव के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। उसने निगाहें घुमाकर आसपास देखा तो सारे नौकर आंखें फाड़े और मुंह खोले धृति को देखे जा रहे थे, जो आज बला की खूबसूरत लग रही थी। यह देखकर अर्नव की मुट्ठियां कस गईं और वो उठकर खड़े होते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए धृति की तरफ बढ़ गया। माधुरी धृति के साथ अभी आधी सीढ़ियां ही उतरी थी जब अर्नव उनके सामने आकर खड़ा हो गया। माधुरी का अर्नव से इस वक्त एक जंग सी छिड़ी हुई थी। धृति के प्रति उसके खराब व्यवहार के कारण मन में अर्नव के प्रति गहरा गुस्सा और नाराजगी के भाव मौजूद थे, पर वो उन्हें बाहर नहीं निकालती थी। अर्नव को सामने देखते ही माधुरी का मन खराब हो गया। चेहरे पर गुस्सा चिढ़ जैसे भाव उभर आए और उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, लीजिए सर, जैसे आपने। उसने अभी इतना कहा ही था कि अर्नव ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया। मतलब साफ था कि वो उसकी बात सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था और उसने मौन धारण करने को कह रहा था। माधुरी मुंह बनाते हुए चुप हो गई, पर अर्नव ने उसे देखा तक नहीं। वो तो धृति के चेहरे का गहराई और बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। अब भी उसने धृति के चेहरे पर निगाहें किकाते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। अर्नव की बात सुनकर माधुरी ने उसे आंखें छोटी छोटी करके घुर्राया, फिर एक नज़र धृति को देखने के बाद मजबूरी में वहां से चली गई। उसके जाते ही अर्नव ने बिना कुछ कहे धृति को अपनी बाहों में उठा लिया उसके अचानक ऐसा करने से धृति ने घबराकर अपनी निगाहें उसकी ओर उठाईं और अनायास ही उसकी हथेलियां अर्णव के सीने और गर्दन पर ब्लेजर पर कस गईं। अर्णव की निगाहें तो बराबर धृति के चेहरे पर टिकी थीं। दोनों की निगाहें एक पल को टकराईं। उन घबराई निगाहों में कुछ सवाल झलक रहे थे, पर वो खामोश रही और अगले ही पल उसने एक बार फिर अपनी निगाहों को झुका लिया। पर अर्णव की नज़रों से न तो उन आंखों में झलकता सवाल छुप सका और न ही अर्णव को देखते हुए उसकी आंखों में आई नमी। अर्णव के चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे।